हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जोया अक्रम से बात कर रही थी और अक्रम उसे समझाने लगा था। अक्रम जोया से कह रहा था, जोया एक बात बोलूं बेटा, अबीर जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वो वाकई तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, वरना आज के ज़माने में तो लोग केवल नाम का रिश्ता ही निभाते हैं। लेकिन अबीर साहब ने तो तुम्हारे और अपने रिश्ते को एक नाम दिया है, और देखो आज तुम्हारी खातिर वो इंसान खुद मरने और किसी को भी मारने के लिए तैयार है। जोया अब और इससे ज्यादा कुछ सुन नहीं पा रही थी। उसने अक्रम से कहा, ठीक है भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर जोया ने फ़ोन काट दिया। जोया को अब अबीर की एक एक बात याद आने लगी थी। कैसे उस दिन किस करते हुए अबीर रुक गया था और वहाँ से चला गया था। अब जाकर जोया को ये समझ में आया था कि अबीर ने ऐसा क्यों किया था। जोया ने आज अबीर को जो दर्द पहुँचाया था, अब उसका उसे पछतावा होने लगा था। वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तभी जोया को अपने टेबल पर कुछ रखा हुआ दिखाई दिया। उसे याद आया, ये बॉक्स तो वो डॉक्टर यहाँ रख कर गई थी और बोली थी, मिसेज राठौर, आपके हस्बैंड को चोट लगी है, अगर उनकी मरहम पट्टी करनी हो तो आप इस फर्स्ट एड बॉक्स के द्वारा कर सकती हैं। तब जोया ने वो बॉक्स हाथ में उठाया और कुछ सोचकर अबीर के कमरे की ओर चल पड़ी। जोया के दिल में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे अबीर के सीने से टपकता हुआ खून याद आया और वो कुछ सोचती हुई उस फर्स्ट एड बॉक्स के साथ बाहर निकल गई। उसने अपने आसपास देखा, पूरा का पूरा फ्लोर खाली था। जोया को कुछ समझ नहीं आया कि वो किस ओर जाए। तभी जोया को याद आया कि जब कुछ देर पहले उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी और तब उसने एक एक दरवाज़ा खोल कर देखा था, तो उनमें से एक कमरा उसे कुछ कुछ अबीर राठौड़ के कमरे के जैसा लगा था। जोया ने सोचा, ये इतना अमीर आदमी है, ज़रूर इस हॉस्पिटल में भी अपने पसंद का कमरा तैयार करवा लिया होगा। अब जोया ने खुद की हिम्मत बांधी थी और वो सोचने लगी थी कि न जाने अबीर राठौर उसके बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं वो उसे माफ भी करेगा या नहीं। एक तो मैं भी इतनी बड़ी झल्ली हूँ कि बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने में वो इंजेक्शन घोप दिया। काश पहले सच का पता चल जाता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। जोया अपनी उधेड़बुन में गुम उस दरवाजे के ठीक सामने पहुँच गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जोया को अपनी हार्टबीट बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। जोया ने हिम्मत की और बिना नॉक किए उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। जोया ने अंदर जाकर देखा, वो कमरा और उस कमरे की सारी साज सज्जा बिल्कुल अबीर के अमेरिका वाले घर के जैसी ही थी। वही खुशबू, वही बेड, वही धीमी धीमी कमरे में जलती हुई लाइट, उतना ही बड़ा किंग साइज का बेड, सब कुछ बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। कह नहीं सकता था कि ये एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल कम कोई 5-स्टार होटल ज्यादा लग रहा था। जोया ने जल्दी से उस बड़े से कमरे के चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाईं, लेकिन उसे अभी राठौड़ कहीं नजर ही नहीं आया। तब जोया ने उस कमरे का बाथरूम चेक किया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। जोया को काफी बुरा लग रहा था। वो फर्स्ट एड बॉक्स लिए अबीर राठौड़ के बेड के एक कोने पर मायूस सी होकर बैठ गई। और अभी जोया को बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी जोया को कहीं से सिगरेट की स्मेल आने लगी। जोया को शुरू से ही बीड़ी, सिगरेट इनकी स्मेल से एलर्जी थी। जब भी कोई उसके आसपास बीड़ी सिगरेट पीता, उसे पता चल जाता था, चाहे कोई कितना ही छुपकर क्यों न पी ले। जोया को सिगरेट की स्मेल से एहसास हो गया था जैसे कोई उसके बेहद करीब बैठकर सिगरेट पी रहा हो, लेकिन उस वक्त वो कमरा तो पूरा खाली था, तो फिर ये स्मेल। तभी जोया के ध्यान से देखने पर उसे बालकनी में कुछ अक्स नजर आया। जोया समझ गई थी कि हो ना हो ये अबीर राठौड़ ही है। जोया ने जल्दी से दवाई का बॉक्स उठाया और बाहर बालकनी की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर अरमान और अरहम अगली सुबह उठे और तैयार होने लगे। उन दोनों ने जोया को ढूंढने के लिए कुछ प्लान रेडी कर लिए थे। वे दोनों जैसे ही तैयार होकर बाहर निकले, उन्होंने देखा गजाला जी ने उनके पसंदीदा खाने से पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल भर रखा था। जैसे ही उन्होंने अरमान और अरहम को देखा, तभी बड़ी ही मीठी जुबान में बोली थी, अरे बेटा उठ गए आप दोनों, जल्दी से आओ, हमने आप दोनों के लिए अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बनाया है। तब अरमान ने खा जाने वाली नजरों से अरहम की ओर देखा था। तभी अरहम अरहम की नजरें भांप गया था और वो जल्दी से गजाला जी से बोला था, वो एक्चुअली मॉम भाई को सुबह सुबह ये सब खाना पसंद नहीं है, वो ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से करते हैं, उसके बाद दोपहर में कुछ भी नहीं खाते, सीधा रात में डिनर करते हैं। ओह, गजाला जी ने हाँ में सर हिलाया, मानो वो सब कुछ समझ गई हों, और उन्होंने एक नज़र अपने बनाए खाने की ओर देखा जहाँ पर दूध जलेबी, समोसे कचौड़ी, जूस, फ्रूट कस्टर्ड एंड आलू पनीर पराठे, कुल मिलाकर एक बेहतरीन नाश्ता वहाँ पड़ा हुआ था जो गजाला जी ने कितने सालों के बाद खुद बनाया था। गजाला जी को आज भी याद था जब अरमान छोटा था तो उसे अपनी माँ के हाथ के समोसे कचौरी बेहद पसंद थे, लेकिन आज उसके बेटे ने वो सब चीजें खाने से मना कर दिया था। अभी गजाला जी कुछ और कहना चाहती थी कि तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी, अरहम आगे बढ़ा और उसने दरवाजा खोल दिया था, तभी दो कुरियर वाले वहां आए, उनके हाथों में बड़े बड़े थैले थे। अरहम ने उनके हाथों से थैले लिए और गजाला जी का सारा खाना वहां से हटवा कर अपना बाहर से मंगवाया हुआ सारा खाना वहां लगा दिया था। गजाला जी का दिल ये देखकर बेहद उदास था, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके अपने बच्चे उनसे इतनी नफरत करेंगे। हालांकि अरहम उनसे बात कर रहा था लेकिन उसकी बातों में फॉर्मैलिटी साफ दिखाई दे रही थी। वेल, गर्मा गर्म खाना लगाकर अरहम ने सोफे पर बैठे हुए अपने भाई को बुलाया और बोला था, ब्रो खाना तैयार है, आप प्लीज आ जाइए। उस वक्त अरमान आज का अपना शेड्यूल तैयार कर रहा था। पहले तो अरमान को ये कंफर्म करना था कि जोया इस शहर में है या नहीं है, और अगर इस शहर में नहीं है तो फिर वो कहाँ है। अरमान के पास उस वक्त 70-80 के करीब आदमी थे जो उस शहर में ही रहा करते थे। अरमान ने आज उन सबको एक साथ बुलाया था, उसे बस जल्द से जल्द अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देने थे। उसके बाद उसे पूरा यकीन था जोया ज्यादा दिन उससे नहीं छिप सकती थी। वेल, अरहम के कहने पर अरमान खाने के लिए उठा और उसने देखा चिकन बिरयानी से लेकर एक से एक बढ़िया खाना वहाँ मौजूद था। अरमान ने एक नज़र अरहम की ओर देखा और अरहम ने गजाला जी को भी खाने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अपने बनाए हुए खाने को देख देख कर हलकान हुए जा रही थी। वेल, अरमान ने उनसे पूछा तक नहीं था और वो बेपरवाही से खाना खाने लगा था। अरमान ने जल्दी ही खाना खाया और अरहम को बोला था कि वो जल्दी से बाहर आ जाए, और अरहम ने भी उल्टा सीधा खाया और फिर वो दोनों भाई अपनी मंजिल की ओर चल पड़े थे। वहीं उन दोनों को जाते देख गजाला जी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर ये दोनों जा कहाँ रहे हैं। गजाला जी ने मन ही मन ये पता लगाने की ठान ली थी कि आखिर कौन है वो जिसे उनके दोनों बेटे ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जोया ने जैसे ही बालकनी में कदम रखा उसने देखा वहाँ अबीर राठौड़ खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक सिगरेट थी जिसके वो लंबे लंबे कश ले रहा था।
अबीर ने केवल लोअर पहन रखा था और उसने उसके ऊपर कुछ नहीं पहना था, वो ऊपर से एकदम नंगा था। शायद सीने में लगे घाव की वजह से उसने शर्ट या टी शर्ट कुछ भी नहीं पहना था। बालकनी में काफी हल्की हल्की सी लाइट थी। जोया ने अबीर को जैसे ही ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गई थी, क्योंकि अबीर ने एक हाथ में तो सिगरेट पकड़ रखी थी, वहीं दूसरे हाथ से वो अपने सीने के घाव को कुरेद रहा था। जोया को ये देखकर काफी गुस्सा आया और वो एक झटके से उसकी ओर बढ़ी और एकदम से अबीर के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई थी। अबीर को कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला, इतने में जोया ने एक झटके से उसका हाथ उसके घाव पर से हटा दिया और बोलने लगी थी, ये आप क्या कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या, या आप में दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। अचानक जोया को अपने सामने देखकर अबीर सब कुछ भूल गया और उसे देखने लगा था, और जोया अबीर को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई उसके जख्म को सेवलॉन से साफ करने लगी थी, और अबीर को इतना सा भी जलन का एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो उस वक्त जोया को देखे जा रहा था और जोया उसकी मरहम पट्टी करने में बिजी थी। जोया ने अबीर के घाव को अच्छी तरह से साफ करके उस पर उस डॉक्टर की दी हुई ट्यूब लगाई और फिर हल्की कॉटन लगाकर उसे वाइट टेप से अटैच कर दिया। जल्दी ही जोया ने उसकी ड्रेसिंग पूरी कर दी थी। तब जोया ने अबीर पर ध्यान दिया और खुद को देखा। अबीर की पट्टी करने के चक्कर में जोया को एहसास ही नहीं रहा था कि वो अबीर के कितने करीब थी। अबीर रेलिंग को और मुंह करके खड़ा हुआ था और जोया उसके रेलिंग के बीच में आ गई थी। बालकनी की रेलिंग जोया की कमर से लग रही थी और जोया अबीर के बेहद करीब थी, इतने करीब कि जोया की गर्म सांसें अबीर की नंगी चेस्ट पर पड़ रही थीं। जोया को लगातार देखते हुए अबीर को एहसास ही नहीं रहा कि उसके हाथ में सिगरेट है, जो धीरे धीरे कप की जलकर खत्म हो चुकी थी, और ध्यान न देने पर अबीर की उंगलियां जल गई थीं। जैसे ही अबीर की उंगली जली, एकदम से उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई, जिसे सुनकर जोया खुद को रोक नहीं पाई और वो मुस्कुराने लगी।